الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امیر اہل سنت کی باتیں۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت بھری باتوں پر مشتمل مضامین سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کی باتیں پڑھ یا سن لے، اسے اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک صوفی بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولا، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، ایک بار میں نے حدیث پاک کے ایک بہت بڑے عالم سے عرض کی، مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ حدیث لکھواتے ہوئے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پڑھا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑے بول مت بولیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبد الملک کو نصیحت بھرا ایک خط روانہ فرمایا، جس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اپنی گفتگو کے ذریعے فخر کرنے یعنی بڑے بول بولنے اور خود پسندی سے بچتے رہو۔ اے عاشقان رسول، ہم سے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ صرف اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل ہی سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مگر بعض لوگ مختلف مواقع پر فخریہ باتیں کرتے اور اپنے بارے میں بڑے بول بولتے نہیں تھکتے۔ مثلاً ہم نے جو دین کا کام کیا ہے ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا، میں نے جو کتاب لکھی ہے ایسی کتاب کبھی کسی نے نہیں لکھی، یا ایسی کتاب کوئی لکھ کر تو دکھائے۔ میرے بیان کے دوران تو ایک آدمی بھی اٹھ کر نہیں جاتا، اس کے کام کی ہمارے کام کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے علم کے آگے فلاں کے علم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ تو ابھی بچہ ہے، ہم تو اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں، وغیرہ۔ اس طرح کے کئی بڑے بول ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بول دیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں بولنے چاہیے۔ یاد رہے کہ تکبر کے مختلف اسباب اور انداز وغیرہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زبان کے ذریعے تکبر کے تحت لکھتے ہیں، مثلا ایک عبادت گزار فخر کے طور پر اور دیگر عبادت گزار لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرتے اور ان کی عیب جوئی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں عبادت گزار ہے، کون، اس کا عمل کیا ہے، اسے بزرگی کہاں سے ملی، میں نے اتنے عرصے سے نفل روزہ نہیں چھوڑا، نہ عبادت کے سبب راتوں کو سویا، روزانہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرتا ہوں، جبکہ فلاں شخص سحری تک سویا رہتا ہے اور تلاوت قرآن بھی زیادہ نہیں کرتا، فلاں آدمی نے مجھے تکلیف دینا چاہی تو اس کا بیٹا مر گیا یا مال لٹ گیا، وہ بیمار ہو گیا، وغیرہ۔ اس طرح دبے لفظوں میں اپنی کرامت کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی ایک عالم فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میں مختلف فنون کا جامع ہوں، حقائق سے آگاہ ہوں، میں نے مشائخ کرام میں سے فلاں فلاں کو دیکھا ہے، لہذا تو کون ہے، تیری فضیلت اور تیری اوقات ہی کیا ہے، تو نے کس سے ملاقات کی ہے، और किससे हदीस की समात की है। ये तमाम बातें वो इसलिए करता है कि सामने वाले को हकीर और खुद को अजीम करार दे। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो इस तरह कहते हैं कि अपना मुरीद है, मेरा शागिर्द है, मुझे यानी सगे मदीना को, अमीर अहले सुन्नत को, ये भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, ज़रूरत बोलना अलग बात है, या फिर अगर कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हो, जैसा कि मेरे मुर्शिद करीम गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह के, उन्होंने फरमाया, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, यानी मेरे मुरीद मत खौफ कर, अल्लाह पाक मेरा रब है। तो ये उनको जचता है, उनको इस तरह की बात करना कोई मायूब नहीं है। बाज़ लोग किसी को दुआ देते हुए कहते हैं, जा बच्चा, जा बेटा, जा भाई, मेरी दुआ तेरे साथ है। मुझे तो ये जुमले बोलना भी कुछ मुनासिब नहीं लगते। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह बोलने की मेरी आदत नहीं है। अगर किसी को दुआ देनी भी है तो यूं कहना चाहिए, अल्लाह करीम आसानी करे, अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अलबत्ता ये कहना कि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, ये अलग चीज़ है, इसमें हर्ज नहीं। अल्लाह करीम हमें दीगर गुनाहों के साथ साथ ज़बान की आफतों से भी महफूज फरमाए। आमीन बिजाही खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। मैं अखबार पढ़ने से क्यों बचता हूँ? एक मरतबा किसी ने मुझे एक पंफलेट दिया जिसमें किसी की तरफ कुछ अयूब मंसूब किए गए थे। मैंने वो पंफलेट पढ़े बगैर जेब में रख लिया और इस तरह गौर करने लगा कि अगर मैं इस पंफलेट को पढ़ूंगा तो कहीं गुनाह तो नहीं मिलेगा। फिर मैंने पंफलेट देने वाले की तवज्जो इस पहलू की तरफ करने के लिए उनसे पूछा कि इसको पढ़ने में कितनी नेकियां मिलेंगी। उसने जवाब दिया, नेकी तो कोई नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि जिसके बारे में ये पंफलेट है, अगर उसे ये मालूम हो जाए कि आपने मुझे ये पंफलेट दिया और मैंने इसे पढ़ा, तो वो खुश होगा या नाराज़? उसने जवाब दिया, नाराज़। मैंने कहा कि जिस पंफलेट के पढ़ने में नुकसान ही नुकसान हो तो उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, लिहाजा मैंने वो पंफलेट ज़ाया कर दिया। ए आशिकान रसूल, जिस तरह किसी मुसलमान में पाई जाने वाली बुराइयों का पीठ पीछे तस्करा करना गीबत, जबकि उसके अंदर उन बुराइयों के ना पाए जाने की सूरत में बयान करना बोहतान कहलाता है, ऐसे ही लिखकर छापने का भी मामला है। बिला इजाज़त शरई मुसलमान की किरदार कुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, चाहे वो ज़बान से बोलकर हो, अखबार के ज़रिए हो, या पंफलेट की सूरत में। जो अहकाम ज़बान से कहने के हैं वही कलम से लिखने के भी हैं। जैसा कि मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, अल-क़लमु अहदुल लिस्सानैन, यानी कलम भी एक ज़बान है, जो ज़बान से कहे पर अहकाम हैं वही कलम पर भी हैं। हाशिया, ये मज़मून 4 रजबुल मुरजब 1441 हिजरी मुताबिक 28 फरवरी 2020 ईस्वी को ईशा की नमाज के बाद होने वाले मदनी मुज़ाकरे की मदद से तैयार करके अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमल आलिया से नो पलक संवार कर पेश किया गया है। लिहाजा ऐसे अखबारात, इश्तिहारात और पम्फलेट्स जो मुसलमानों के अयूब व नकाइस पर मुश्तमिल हों, उनके पढ़ने और सुनने से अपने आप को बचाइए। मेरी मालूमात के मुताबिक फ़ी ज़माना तकरीबन अखबारात बेपर्दा औरतों की तस्वीर और गुनाहों भरी तहरीरात से पुर होते हैं। आजकल शायद ही कोई अखबार ऐसा हो जिसमें मुसलमान की इज्जत का तहफ्फुज़ हो। कभी कोई मुसलमान वज़ीर आज़म हदफ़े तनकीद होता है तो कभी सदर, कभी वज़ीर आला की शामत आती है तो कभी गवर्नर की। अलगरज सियासतदान हो या आम मुसलमान, अखबारात में उमूमन सबकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। بالخصوص الیکشن کے دنوں میں کچھ لوگ تہمتوں اور غیبتوں سے بھرپور بیانات داغتے، اخبارات میں چھاپتے اور خوب کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر میں اخبارات، غیر شرعی اشتہارات اور گناہوں بھرے پمفلیٹس پڑھنے سے بچتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کی برائی سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو شرعی اجازت اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے گفتگو یا تحریر وغیرہ میں بقدر ضرورت صرف اسی برائی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اے کاش ہر مسلمان اپنے عیبوں پر نظر رکھے، دوسروں کے عیوب بیان کرنے یا لکھ کر چھاپنے کے بجائے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی جان و مال اور عزت کا محافظ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کر کر کے انہیں دور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطاریوں کے لیے بشارت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل میں پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چشمے پھوٹتے محسوس کیے ہیں۔ عشق رسول کا جام مجھے میرے غوث پاک نے پلایا، میرے اعلیٰ حضرت نے پلایا رحمت اللہ علیہما۔ الحمدللہ مجھ پر یہ خصوصی فیضان ہے کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے، تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت اطہار خصوصاً شہداء کربلا سے بڑا پیار ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے بڑی محبت ہے، خصوصاً غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت سے سادات کرام کا احترام میں اپنی نس نس میں پاتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوگا، عطاری بنے گا، انشاءاللہ وہ کبھی بھی میٹھے میٹھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام اہل بیت اطہار بشمول مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین، اور تمام صحابہ کرام بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان پاک ہستیوں سے غداری نہیں کر سکتا، بلکہ جو کسی جامع شرائط شیخ کا مرید ہوگا اور میرے سلسلے میں طالب ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ان پاک ہستیوں کا کبھی بھی باغی نہیں بنے گا۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک میرے کہے کی لاج رکھ لے، میرے مولا 25 رمضان مبارک 1439 ہجری کو میں نے حسن ظن کی بنا پر یہ چند کلمات نگران شورا حاجی عمران عطاری کے مطالبے پر عرض کیے ہیں۔ اے اللہ میری لاج رکھ لے کہ ایسا ہی ہو، ہم عمر بھر انبیاء کرام علیہم السلام کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی محبتوں کا دم بھرتے رہیں۔ سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے گن گاتے رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کتابیں کیسے لکھتے ہیں؟ ایک مدنی مذاکرے میں سڈنی آسٹریلیا سے ایک بچے عبداللہ عطاری نے سوشل میڈیا کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا کہ آپ نے 600 صفحات کی کتاب فیضان نماز لکھی، تو کیا اس کے لکھنے سے آپ کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر کتاب ایک گھنٹے یا ایک دن میں نہیں لکھی جاتی، اور نہ ہی مسلسل لکھتے رہنے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اب تو کمپوزنگ کا دور ہے، मुझे किताब की कंपोजिंग नहीं आती, दावत इस्लामी की मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से काफ़ी मवाद कंपोज शुदा भी मिल जाता है। कुछ मशवरे देकर मंगवाना भी पड़ता है, कुछ किताबों से निकाल कर कंपोज करवाना भी पड़ता है, जगह ब जगह कलम भी चलाना पड़ता है, काम के दौरान पेज में गैप्स वक्फे भी आते रहते हैं, इसलिए हाथों में दर्द रहना ज़रूरी नहीं। ताहम अब की बार मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि बसा औकात कलम पकड़ने से मेरे हाथ की उंगलियां अकड़ जाती थीं, तो मैंने हकीम साहिब का बताया हुआ इलाज किया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उंगलियां ठीक हो गईं। अब भी कुछ ना कुछ लिखने का काम तो कर रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कई रोज़ से मेरी उंगलियां अकड़ी नहीं। मगर जाहिर है कि काम करते करते कभी आदमी को तकलीफ़ हो भी सकती है। नीज़ लिखना एक दिमागी काम भी है और लिखते हुए कभी दिमाग भी थकन का शिकार हो जाता है। ए आशिकान रसूल जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप गौर फरमाइए कि किताबें कितनी मेहनत से लिखी जाती हैं, मगर आप में से कई वो होंगे कि जो मकतबतुल मदीना की कुतुब और रसायल को पढ़ना तो दूर की बात, मगर आप में से कई वो होंगे कि जो मकतबतुल मदीना की कुतुब और रसायल को पढ़ना तो दूर की बात, उन्हें खोल कर भी नहीं देखते होंगे। आप लोगों को मुझ पर इन मानों में रहम करना और मेरी हमदर्दी करनी चाहिए कि मैं अल्लाह पाक की रिज़ा पाने के लिए आप लोगों ही के लिए लिखता हूँ कि मेरे मदनी बेटे और मदनी बेटियाँ इन किताबों को पढ़ें और अपनी आखिरत की बेहतरी का सामान करें। अल्लाह पाक हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मकतबतुल मदीना से प्रिंट होने वाली कुतुब व रसाइल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। किताब लिखने की एहतियातें। तसनीफ व तालीफ के ज़रिए दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाना ये एक पुराना तरीक़ा है, ये जिस कदर अहम है इसी कदर मुश्किल भी है। तहरीरी काम में कई तरह की एहतियातों की अशद ज़रूरत है, इस हवाले से चंद बातें अर्ज करता हूँ। दीनी किताब रिसाला या मज़मून लिखने में हमेशा अल्लाह पाक की रज़ा को पेश नज़र रखना चाहिए, नामनमूद और शोहरत की तमन्ना ना रखी जाए। हुब्बे जाह से बचते हुए किताब पर अपना नाम लिखना अगरचे जायज़ है, लेकिन असल मकसूद अल्लाह पाक की रज़ा का हुसूल होना चाहिए। लिखते हुए ये खौफ होना चाहिए कि मैंने जो कुछ लिखा है कहीं इसके सबब आखिरत में फंस ना जाऊँ। तहरीर के मामले में इखलास का मामला भी नहायत नाजुक है। नफ्स शैतान इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से रियाकारी और अपनी वाह वाह के शौक़ में मुबतला करने की कोशिश में लगे रहते हैं। याद रखिए, आयात और अहादीस मुबारका की अपनी मर्जी से तफसीर व शराह करना हराम है। सिर्फ़ मुफस्सिरीन व शारहीन की राय नकल की जाए। यूं ही शरई मसाइल लिखने में भी निहायत एहतियात की ज़रूरत है, कहीं कोई गुनाह जारिया की सूरत न बन जाए। बाद मुसन्निफीन की तहरीरों में शरई अगलात पाई जाती हैं। कमोबेश 20 साल पहले इन्हीं बातों को देखते हुए गालबन 2000 हिजरी में हमने मजलिस तफ्तीश कुतुब व रसाइल बनाई थी, ताकि मुसन्निफीन अपनी कुतुब की शरई तफ्तीश करवा सकें। अपनी तहरीर में गैर मोहतात अल्फाज का इंतखाब, दिली जज्बात की ताईद ना होने के बावजूद आजिज़ी पर मुश्तमिल फ़िक्रात लिखना और झूठी मुबालगा आराई से काम लेना आखरत में गिरफ्त का सबब बन सकता है। हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाही अलैहिम अल्फाज के इस्तेमाल में बहुत मोहतात होते थे। इहयाउल उलूम की तीसरी जिल्द में है, हज़रत मैमून बिन अबू शबीब रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मैं बैठा ख़त लिख रहा था कि एक हर्फ पर आकर रुक गया, अगर ये लफ्ज़ लिख देता हूँ तो ख़त खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन झूठ से दामन नहीं बचा सकूँगा। फिर मैंने वो लफ्ज़ छोड़ने का अज़म कर लिया कि भले मेरा ख़त खूबसूरत ना हो, मगर मैं ये लफ्ज़ नहीं लिखूंगा। ये तो हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाही अलैहिम की तहरीर में एहतियातें थीं, लेकिन आजकल के बाज़ मज़ामीन और आर्टिकल्स में सच और झूठ की परवाह नहीं की जाती। ऐसा लिखने से बेहतर है इंसान कलम रख दे। नाज शरीफ, मनकबत और नज़्म वगैरह लिखने में मज़ीद एहतियात की हाजत है, क्योंकि इसमें कलाम का वज़न बराबर रखने, रदीफ़ व काफिया निभाने के लिए कई दफ़ा गैर शरई या गैर मुहतात अशआर भी मुरतब हो जाते हैं। लिहाजा सलामती और आफियत इसी में है कि जो मज़बूत आलिम दीन फ़न शायरी में माहिर और ज़खीरे अल्फाज का हामिल ना हो, वो हम्द व नात वगैरह मंजूम कलाम मुरतब करने की कोशिश ना करे। इस मैदान में बड़े बड़े शुआरा जिनमें नात गो शायर भी शामिल हैं, उन्होंने ठोकरें खाई हैं और ऐसी ऐसी शरई गलतियाँ छोड़कर दुनिया से रुखसत हुए हैं कि अलामान वल हफीज़। लिखने वालों ने उनकी मिसालें तक लिखी हैं कि फलां इतना बड़ा शायर था, इतने इतने कलाम लिखे, नातें भी कहीं, मगर ये गलत बात लिख गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम तहरीरों की शरई तफ्तीश होती है, यहाँ तक कि मैं एक पम्फलेट भी लिखता हूँ तो उसकी शरई तफ्तीश करवाता हूँ, अशआर लिखूँ तो उनकी शरई और फ़न्नी दोनों किस्म की तफ्तीश करवाता हूँ। अल्लाह करीम हमें तहरीर में हुब्बे जाह रियाकारी और शरई व अखलाकी गलतियों की आफतों से बचाए और सिर्फ वही बात लिखने की तौफीक अता फरमाए जो उसको राज़ी करने का सबब बने। आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। दावत इस्लामी का क्या होगा? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया से मदनी मुज़ाकरे 15 शाबान 1440 बमुताबिक 20 अप्रैल 2019 ईस्वी में सवाल हुआ कि कुछ लोग कहते हैं जब तक आप यानी अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं तब तक दावत इस्लामी चलती रहेगी, इसके बाद निगरान साहिबान और अराकीन शूरा वगैरह सब बिखर जाएंगे और फिर ना जाने क्या होगा, इसकी क्या हकीकत है? आप दामत बरकातुम लालिया ने जवाब में फरमाया, बाज़ लोग ये समझते हैं कि मेरे मरने के बाद दावत इस्लामी ख़त्म हो जाएगी, इंशा अल्लाहुल करीम ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी औलाद और तमाम दावत इस्लामी वालों को मरकज़ी मजलिसे शूरा की इताअत करने की ताकीद की है और बारहा मदनी मुजाकरों में और बड़ी रातों के इजतिमात में ये ऐलानात भी किए हैं कि हमने दावत इस्लामी में मरकज़ी मजलिसे शूरा के मातहत रहकर ही मदनी काम करना है, मरकज़ी मजलिसे शूरा की मुखालिफत नहीं करनी। दावत इस्लामी कोई दुकान या तरका यानी विरासत नहीं है जो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम होगा, बल्कि दावत इस्लामी में जो काम करेगा उसको सलाम है। अल्लाह के फजलो करम से मरकज़ी मजलिसे शूरा काम कर रही है और ये करती रहेगी। मरना सबको है, अगर किसी के इंतकाल से दीन का काम रुक जाता तो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती के जिनकी बदौलत हमें इस्लाम मिला यानी हमारे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बावजूद दीन का काम नहीं रुका, तो इलियास कादरी किस हिसाब में है? इसके मरने से क्या होता है? जो मेरे लिए दीन का काम करता है आज से ही उसको खुदा हाफिज, और जो अल्लाह के लिए दीन का काम करता है वो आज भी करे और मेरे मरने के बाद भी करे। ये ना सोचे कि इलियास कादरी चला जाएगा तो यूं हो जाएगा या इलियास कादरी के बाद क्या होगा, ये सब शैतानी वसवसे हैं, इससे हम सबको बचना चाहिए। जीते जी भी तो कुछ हो सकता है। ऐसी कई तहरीकें होती हैं कि जिनके कायदीन जिंदा और सेहतमंद होते हैं मगर इनकी तहरीकें ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल ये मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद भी आपने दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिसे शूरा को ही फौकियत देनी है, ये जिस तरह चाहे उसी तरह दावत इस्लामी के ज़रिए दीन की खिदमत करनी है। मरकज़ी मजलिसे शूरा से कभी भी गद्दारी नहीं करनी और जो मरकजी मजलिस शूरा की मुखालिफत करे उसका साथ भी नहीं देना है। अल्लाह पाक खाइनीन की नज़र बद से मेरे दावत इस्लामी वालों को और मेरी लाडली मरकजी मजलिस शूरा को महफूज रखे और इन सब को इखलास के साथ दीन की खूब खिदमत करने की सआदत बख्शे। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। मेरी दाढ़ी कैसे निकली? हिकायत। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलिया सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुम लालिया फरमाते हैं, बरसों पुराना वाक़या है। सिंध पाकिस्तान के एक शहर नवाब शाह में एक 17-17 साल इस्लामी भाई की घनी दाढ़ी देखकर मैंने ताज्जुब का इजहार किया। इस पर उन्होंने इनकिशाफ किया कि मैं चेहरे पर दुम्बी का दूध लगाया करता था। मैंने मार्च 2017 में उस इस्लामी भाई से राबता करके तस्दीक चाही तो उन्होंने बताया कि आप 1993-94 में जब नवाब शाह आए थे, ये उस वक्त का वाक़या है। अब मेरी उम्र 41 साल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 बरस की उम्र से मदनी माहौल में आ गया था और इमामा शरीफ भी सजा लिया था। मेरी दाढ़ी नहीं निकल रही थी। हमारे घर पर एक साहिब दूध देने के लिए आते थे, हम उनको चाचा हाजी कहा करते थे। उन्होंने मुझे इमामा शरीफ में देखकर खुशी का इजहार करते हुए कहा, तुम बकरी या दुम्बी का कच्चा दूध चेहरे पर लगाया करो, इंशाअल्लाह दाढ़ी निकल आएगी। तो मैंने कहा, दूध भी आप ही ला कर दीजिए। चुनाचे वो जब जब बकरी या दुम्बी का दूध ले आते, मैं सोने से पहले दाढ़ी उगने की जगह पर लगा लेता और फजर के लिए उठता तो मुंह धो लिया करता। मैंने कई दफ़ा ऐसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह दूध लगाते रहने से आखिरकार मेरी दाढ़ी भी निकल आई और घनी भी हो गई। अल्लाह पाक से आफियत मांगिए। करोड़ों हम्बलियों के पेशवा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम याद करता रहता था, फिर जब इल्म हदीस की तरफ माइल हुआ तो इस इल्म में मेरी मशगूलियत बढ़ गई और मैंने अपने आप से कहा कि कुरान पाक कब याद करूँगा। तो मैंने अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह हिफ्ज़े कुरान करीम की सआदत अता करके मुझ पर एहसान फरमा। मगर उस वक्त आफियत के अल्फाज नहीं कहे थे। दुआ तो कबूल हुई मगर इसकी कबूलियत की सूरत यूं बनी कि जब मुझे कैद किया गया तो इस दौरान मैंने कुरान करीम याद कर लिया। लिहाजा अल्लाह पाक से जब तुम किसी हाजत का सवाल करो तो साथ में आफियत भी मांगा करो। ए आशिकान रसूल, आफियत का मतलब है सलामती। लिहाजा मसलन अल्लाह पाक से नौकरी के लिए दुआ करनी है तो इस तरह दुआ मांगिए कि या अल्लाह पाक, फलां नौकरी अगर मेरे हक में बेहतर हो तो मुझे आफियत और सलामती के साथ वो नौकरी मिले। रब करीम से सिर्फ आफियत ही मांगने की अहमियत के मुतालिक चार फरामीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नंबर 1, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, सबसे अफजल दुआ कौन सी है? इरशाद फरमाया, अपने रब से आफियत और दुनिया और आखरत की भलाई मांगो। दूसरे दिन हाजिर होकर फिर उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, सबसे अफजल दुआ कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की मिसल यानी पहले दिन जो जवाब अता फरमाया था उसी तरह का जवाब इरशाद फरमाया। उस शख्स ने तीसरे दिन हाजिर होकर फिर वही सवाल किया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी मिसल जवाब देकर इरशाद फरमाया, जब तुझे दुनिया और आखरत में आफियत मिल जाए तो तू कामयाब हो गया। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करना उसे ज़्यादा महबूब यानी प्यारा है। नंबर 2। नंबर 3, अल्लाह पाक से अफ़ो आफियत का सवाल किया करो क्योंकि यकीन यानी ईमान और दीन में समझ बूझ के बाद किसी को आफियत से बेहतर कोई चीज़ नहीं दी गई। नंबर फोर, बंदा इस दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फिद्दुनिया वल आखिरा, यानी ए अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत का सवाल करता हूँ से अफजल कोई दुआ नहीं मांगता। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मुआफात में जिस्मानी, रूहानी, नफसानी, शैतानी तमाम आफतों से सलामती शामिल है। नीज़ सूफिया किराम फरमाते हैं कि आफियत इसी में है जिसमें रब राजी है, आफियत इसी में है जिसमें रब राजी है। लिहाजा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैबर में जहर खा लेना, फारूक आजम का मुसल्लाए मुस्तफ़ा पर खंजर खाकर शहीद होना, उस्मान गनी का कुरान पाक पढ़ते हुए ज़बह हो जाना, इमाम हुसैन का बेआबो दाना मिसले परवाना, शमए मुस्तफ़वी पर निसार हो जाना, आफियत ही था। लिहाजा रब करीम से वो आफियत मांगो जो उसके इल्म में हमारे लिए आफियत है, ना वो जो हमारे इल्म में हमारे लिए आफियत हो। अल्लाह पाक हमें दोनों जहां में आफियत व सलामती अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।